नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिक्षकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। उत्तर रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण 45 ट्रेनें रद्द की। दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी रैकेट में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार किए। भारतीय संसद के 100 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित वीर विट्ठल भाई की गौरव गाथा प्रदर्शनी को जनता के लिए खोला गया और गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने शिक्षकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। इस अवसर पर NDMC के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि साझेदारी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण दक्षताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार, समग्र और मूल्य संचालित मार्गदर्शक बनने के लिए सशक्त बनाएगी। उत्तर रेलवे ने जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में हुए भूस्खलन के कारण 45 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, पठानकोट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।
उत्तर रेलवे द्वारा 45 के आसपास ट्रेन्स का कैंसिलेशन किया गया है और 25 से अधिक ट्रेन्स को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जैसे दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर है 9717638775 और जम्मू का हेल्पलाइन नंबर है 7888839911।
जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन आज लगातार दूसरे दिन भी स्थगित है। प्रधानमंत्री मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी पीड़ित लोगों की सहायता कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूस्खलन में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के सुचारू संचालन के लिए भी प्रार्थना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन में जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। श्रीमती गुप्ता ने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर कहा कि उनके व्यवहार में अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि श्री भारद्वाज अस्पताल निर्माण घोटाले से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं।
जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो न्यायालय का दरवाजा खुला है। आप कानून की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप नौटंकी करेंगे, ड्रामा रचेंगे, मीडिया ट्रायल करेंगे, तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र है। मुझे लगता है कि अस्पताल निर्माण घोटाला, दवाई घोटाला, ऐसे जो गंभीर विषय हैं, सौरभ भारद्वाज अपनी चोरी छुपाने के लिए उन विषयों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अभी जांच एजेंसी ने तथ्य सामने रखे नहीं है। एक बार सारी चीजें आ जाएं, उसके बाद ये नौटंकी भी खत्म होगी और ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये भी खत्म होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के 20 वर्षों के मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस समिति के गठन का उद्देश्य सरकार के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की जानकारी, भुगतान की राशि और नुकसान आदि का आकलन करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति यह भी विवरण देगी कि इन वर्षों में सरकार के खिलाफ कितने निर्णय दिए गए, इनमें भुगतान की राशि की तो जानकारी शामिल होगी ही, साथ ही समिति यह भी विवरण देगी कि इन निर्णयों में सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आयोजित एक विशेष व्याख्यान सत्र में शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अधिनियम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। एक रिपोर्ट।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा कानून के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे फीस निर्धारण में पारदर्शिता, अभिभावकों की सशक्त भागीदारी और फीस वृद्धि में अभिभावकों को मिला वीटो पावर। अब कोई निजी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। फीस तय करने के लिए स्कूलों को लोकेशन, सुविधाएं, खर्च और शिक्षण स्तर जैसी विस्तृत जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मनमाने शुल्क निर्धारण पर रोक लगाते हुए यह कानून अभिभावकों को राहत प्रदान करेगा और प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाएगा। श्री सूद ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और समान अवसर का माध्यम बनाना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने अपनी किराए की आय को बढ़ाने के लिए 7 प्रमुख परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। इनमें आतिथ्य, भंडारण, स्वास्थ्य और खुदरा जैसे क्षेत्रों के लिए प्रमुख संपत्ति स्थलों की पेशकश शामिल है। इस योजना से DDA को अपनी जमीन पर स्वामित्व सुनिश्चित होगा और राजस्व प्राप्त होगा और दिल्ली में व्यवसाय वापस आएगा। इस योजना का उद्देश्य किराए की आय को 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी करते थे। पुलिस के अनुसार यह धोखाधड़ी फर्जी शेयर बाजार योजनाओं और मनोवैज्ञानिक हेरफेर का इस्तेमाल करके की जाती थी। इस गिरोह ने 31 लाख रूपये की ठगी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री रेडी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया है। इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में ऋण राशि बढ़ा दी गई है। ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए UPI से संबद्ध रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें खुदरा और थोक लेन देन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन भी शामिल है। पहले किस्त के ऋण को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और दूसरी किस्त के ऋण को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तीसरी किस्त के ऋण राशि 50,000 रुपए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को एक मुखबधिर महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि पीड़िता को एक सुनसान रास्ते पर अकेले टहलते समय अगवा करने और उसका यौन उत्पीड़न करने वाले 2 कथित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुनर्वास महानिदेशालय DGR 29 अगस्त को नई दिल्ली के शंकर विहार सैन्य स्टेशन के अरावली सभागार में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए विशेष रूप से रोजगार मेला आयोजित करेगा। पूर्व सैनिकों और नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। रोजगार मेला रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जामिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने आज पुरानी और नई संसद का भ्रमण किया। इस भ्रमण कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान और उप प्रधानाचार्य के साथ शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस भ्रमण के दौरान छात्रों को सदन की बुनियादी व्यवस्थाओं से परिचित कराया गया। दिल्ली राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की सभी जिला अदालतों और उच्च न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें 31 मई तक किए गए ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें नागरिकों को ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी और चालान भुगतान की पुरानी रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग क्षेत्र में आज दिल्ली को कूड़े से आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली नगर निगम ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान दोनों लोगों से अपील की कि वे न केवल अपने घरों में बल्कि आसपास के इलाकों में भी स्वच्छता बनाए रखें। 1992 बैच के वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी विवेक कुमार गौड़ का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। वीके गौड़ वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। उन्होंने गंगटोक स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई से अपने करियर की शुरुआत की और पत्र सूचना कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय संसद के 100 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित वीर विट्ठल भाई की गौरव गाथा प्रदर्शनी को जनता के लिए खोल दिया गया है। उद्घाटन के कुछ ही दिनों में यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों, विद्वानों और नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में विद्यार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले की जीवंत प्रतिमाओं के साथ तस्वीरें ले सकते हैं।
भारत के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष वीर विट्ठल भाई पटेल की शताब्दी पर आयोजित इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य महान नेताओं के बीच आदान प्रदान हुए दुर्लभ पत्र, भाषण और अभिलेखीय तस्वीरें शामिल हैं। ये अनमोल धरोहर दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार से विशेष रूप से लाई गई है और पहली बार जनता के सामने प्रदर्शित की जा रही है। ये प्रदर्शनी केवल इतिहास ही नहीं दिखाती बल्कि उन्हें अनुभव कराने का अवसर भी देती है। अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी जोन, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवंत प्रतिमाएं, दुर्लभ दस्तावेज और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पर आधारित विशेष डॉक्यूमेंट्री सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए सीखने और जानने का अद्भुत अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं। 31 अगस्त तक चलने वाली प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक इसमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए दिलनशी आरसू।
गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज समूचे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किनॉट प्लेस स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि गणपति के अनेक रूप जीवन में विवेक, सफलता और समृद्धि का वरदान देते हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिक्षकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की। उत्तर रेलवे ने श्रीमाता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण 45 ट्रेनें रद्द की। दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी रैकेट में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार किए। भारतीय संसद के 100 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित वीर विट्ठल भाई की गौरव गाथा प्रदर्शनी को जनता के लिए खोला गया और गणेश चतुर्थी का उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।